समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे।
उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि ना मनोरथे ना ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगः। अर्थात उद्यम से ही कार्य सफल होते हैं, ना कि मनोरथों से। ठीक उसी प्रकार जैसे सोए हुए शेर के मुंह में हिरण स्वयं नहीं आता, उसके लिए शेर को परिश्रम करना ही पड़ता है। इसीलिए इस अनमोल जीवन में अपने सपनों के लिए मेहनत करते रहें और अपने मनोरथों को सिद्ध करें। इन्हीं प्रेरणादायक पंक्तियों के साथ आकाशवाणी FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर समाचार सेवा प्रभाग के विशेष समाचार पत्रिका कार्यक्रम आज सवेरे के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। आज की इस शीतल और सुहावनी प्रभात में आपके साथ मैं हूं मुकेश कुमार बल और मेरे साथ हैं सुभद्रा रामाचंद्रन। सुभद्रा, आपको भी मेरा नमस्कार।
Namaskar Mukesh, good morning and a very warm welcome to all our listeners tuned in to Akashwani FM Gold on 100.1 MHz and our Akashwani network. So stay with us friends for another interesting edition of our magazine show program, Aaj Savere, beginning with some news headlines.
Ji, Pradhan Mantri Narendra Modi ne kaha hai ki Operation Sindoor ne Bharat ki shakti aur sashastra balon ki veerta ko punah sthapit kiya hai और स्वदेशी हथियारों की प्रगति को दर्शाया है। नई दिल्ली में वार्षिक NCC PM रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आधुनिक युद्ध में लड़ाई केवल सीमाओं, टैंकों या तोपों के उपयोग तक सीमित नहीं है, बल्कि साइबर और सूचना युद्ध के संदर्भ में कोड और क्लाउड में भी लड़ी जा रही है। करियप्पा परेड ग्राउंड में आयोजित कार्यक्रम के दौरान NCC द्वारा प्रस्तुत ऑपरेशन सिंदूर पर आधारित विशेष झांकी का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए NCC कैडेटों द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना की। इस अभियान के दौरान देश भर में 75,000 से अधिक NCC कैडेटों ने स्वेच्छा से नागरिक सुरक्षा, अस्पताल प्रबंधन, आपदा राहत और सामुदायिक सेवाओं में अथक परिश्रम किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि NCC द्वारा दिया जाने वाला ये प्रशिक्षण केवल परेड ग्राउंड तक सीमित नहीं है, बल्कि ये राष्ट्र सर्वोपरि की भावना पैदा करता है। श्री मोदी ने युवाओं में मोटापे का मुद्दा भी उठाया और उन अध्ययनों का हवाला दिया जो बताते हैं कि भारत में हर 3 में से 1 व्यक्ति भविष्य में मोटापे से पीड़ित हो सकता है। इस अवसर पर श्री मोदी ने स्वस्थ जीवन शैली के महत्व पर जोर दिया।
फिटनेस केवल कुछ मिनट के व्यायाम तक सीमित नहीं है, ये भी हमारे स्वभाव में आनी चाहिए। हमारे खान पान से लेकर हमारी दिनचर्या तक एक अनुशासित जीवन शैली भी आवश्यक है। मेरे लिए ये जानना सुखद रहा कि आप फिट इंडिया कैंपेन को आगे बढ़ा रहे हैं। NCC आपको सिर्फ कदम ताल नहीं सिखाती, ये संगठन आपको एक नागरिक के तौर पर जिम्मेदारी के साथ जीना सिखाता है।
Finance Minister Nirmala Sitharaman will table the Economic Survey 2025-2026 in Parliament today. The document is prepared by the Finance Ministry's Department of Economic Affairs under the guidance of the Chief Economic Advisor. The Economic Survey is a comprehensive review of the country's current economic state and future outlook. Union Budget 2026-27 will be presented on Sunday. The first phase of the budget session will be held until the 13th of next month. The second phase will take place from 9th March to 2nd of April. There will be 30 sittings during the budget session.
गणतंत्र दिवस का समापन समारोह बीटिंग रिट्रीट आज नई दिल्ली में विजय चौक पर आयोजित होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अन्य केंद्रीय मंत्री इसमें उपस्थित होंगे। समारोह में सेना, नौसेना और वायुसेना और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के बैंड अपनी अपनी प्रस्तुतियां पेश करेंगे।
In
इस वर्ष बीटिंग रिट्रीट समारोह में सेना, नौसेना, वायुसेना और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के बैंड द्वारा कुल 30 प्रस्तुतियां दर्शकों को मंत्रमुग्ध करेंगी। समारोह की शुरुआत मास्ट बैंड की कदम कदम बढ़ाए जा धुन के साथ होगी, जिसके बाद पाइप्स और ड्रम बैंड द्वारा अतुल्य भारत, वीर सैनिक, मिली जुली, नृत्य सरिता, मारुनी और झेलम जैसी मधुर धुनें बजाई जाएंगी। बैंड विजय भारत, हथरोही, जय हो और वीर सिपाही धुन का प्रदर्शन करेंगे। वायुसेना का बैंड ब्रेव वॉरियर, ट्वाइलाइट, अलर्ट और फ्लाइंग स्टार धुनें बजाएगा, जबकि नौसेना का बैंड नमस्ते, सागर पवन, मातृभूमि, तेजस्वी और जय भारती की प्रस्तुति देगा। इसके बाद सेना का बैंड विजय भारत, आरंभ है प्रचंड है, ए वतन, आनंद मठ, सुगम्य भारत और सितारे हिंद जैसी धुनें बजाएगा और अंत में बैंड भारत की शान, वंदे मातरम और ड्रमर्स कॉल धुनें बजाएंगे। समारोह का समापन बिगुल वादकों द्वारा बजाई जाने वाली सदाबहार धुन सारे जहां से अच्छा के साथ होगा। रिशु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से चिराग।
Uttar Pradesh government has launched a helpline for farmers which will assist them in getting complete information about the welfare schemes run by the government. Now, farmers will no longer need to visit government offices repeatedly to get information about the Agriculture Department schemes. All information will be available through a single phone call. Agriculture Minister Surya Pratap Shahi, along with the Minister of State Baldev Singh Aulakh, inaugurated the Agriculture Department helpline at the Directorate of Agriculture in Lucknow. Through this helpline, farmers across Uttar Pradesh can get any information by calling on the phone number 0522-231-7003 from Monday to Friday between 10 a.m. to 6 p.m. Agriculture Minister Surya Pratap Shahi said the objective of this helpline is to ensure that farmers do not have to wander or make repeated visits for information about schemes.
केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने तमिलनाडु में किसान उत्पादक संगठनों को मजबूत करने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। यह निर्णय केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की हाल ही में इरोड यात्रा के बाद लिया गया है। समिति बेहतर व्यवसायिक और परिचालन मॉडल के माध्यम से एफपीओ को मजबूत करने के उपाय सुझाएगी। तमिलनाडु के लिए महत्वपूर्ण फसलों और कृषि प्रणालियों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, जिनमें केला, हल्दी, नारियल, टैपियोका और प्राकृतिक और जैविक कृषि पद्धतियां शामिल हैं।
Going over to some sports news. In men's cricket, India suffered a 50-run defeat against New Zealand in the fourth T20 international of the five-match series at Vishakhapatnam last night. Put into bat first, visitors posted 215 runs for 7 wickets in their stipulated 20 overs with the help of Tim Seifert's 62 off 36 and Devon Conway's 44 off 23 balls. In reply, India were bowled out for 165 in 18.4 overs, despite a quick 65 off 23 balls by Shivam Dubey and 39 off 30 balls by Rinku Singh. New Zealand skipper Michelle Santner claimed 3 wickets. The fifth and final match will be played on Sunday at the Greenfield Stadium in Thiruvananthapuram.
और श्रोताओं, अब रुख करते हैं महानगरों की खबरों का। सबसे पहले चेन्नई, बेंगलुरु और हैदराबाद की खबरें जानते हैं सुभद्रा से।
यस, स्टार्टिंग फ्रॉम न्यूज़ फ्रॉम चेन्नई, द पोनीज एंड अदर वर्किंग इक्वाइन्स विल गेट प्रोटेक्शन अंडर अ न्यू स्टेट पॉलिसी। द रूल्स मैंडेट रजिस्ट्रेशन, माइक्रोचिपिंग, कैप्ड वर्किंग आवर्स एंड फिक्स्ड रिटायरमेंट। द गवर्नमेंट ऑर्डर मेक्स द ओनर्स लीगली अकाउंटेबल फॉर द कंडीशन ऑफ देयर एनिमल्स and gives authorities powers to seize equines that are overloaded, starved, injured or cruelly treated and shift them to rehabilitation shelters. FIRs can be filed under the Prevention of Cruelty to Animals Act and it is also punishable by imprisonment and penalty. Under the new rule, if an animal dies due to neglect, the owner may face a permanent ban for keeping equines. Repeat offenders may be publicly listed and animals that are retired or seized cannot be put back to work. The order stated that every equine must have a unique identity, including a microchip number, a health card, a vaccination record, and a registered owner. Tamil Nadu Animal Welfare Board surveyed 122 equines in Chennai. Getting to news from Bengaluru now. Vishveshwaraya Technological University Vice Chancellor Dr. S. Vidyashankar cautioned the interns that separate inspection squads will be appointed to monitor the functioning of students and companies. He was speaking at the inauguration of the workshop on internship implementation for coordinators in educational institutions in Bengaluru yesterday. The Vice Chancellor came strongly against the fake internship certificate submitted by the interns. Some companies, he added, have demanded money from the interns, though they are meant to be free. He said an internship portal was introduced to control the fake certificates. As of now, 81,000 students have registered through this portal and their internship will begin from the first week of next month. Mr. Vidyashankar said disciplinary action will be initiated against companies demanding money from the interns. The executive committee member of the university, G. Rakesh, informed that 14,000 companies are offering internships through this portal. Over 200 internship coordinators from various engineering colleges participated in the workshop, who will resolve the issues faced by the interns. Now let's move to Hyderabad. The historic Medaram Samakka Saralamma Mahajatara, often hailed as a Kumbh Mela of Telangana, witnessed its first significant milestone last evening as Goddess Saralamma arrived at the sacred platforms Gadelu. Amidst a wave of spiritual fervor and traditional rituals, the goddess was brought from Kannapeli to Medaram, marking the official commencement of the tribal festival's core events. The proceedings began at the Kannapeli temple with intricate tribal rituals performed by the traditional priests. Before the goddess began her journey, deities from neighboring regions, including Govinda Rajulu from Kondai, were brought to the village. Following a two-hour special prayer session led by Chief Priest Kaka Saraya and others, the idol of Saralamma left Kannapeli around 7 p.m. Thousands of devotees lined the route, dancing to drum beats and seeking blessings as the procession crossed the Jampanna Vagu stream. With the first phase successfully completed, the focus now shifts to the arrival of Goddess Samakka today, an event that draw millions of pilgrims from across the country. And over to you now, Mukesh, for rest of the news, Delhi, Bombay and Calcutta.
जी सुभद्रा, शुरुआत करते हैं सबसे पहले दिल्ली से। दिल्ली में आयोजित होने वाले बीटिंग रिट्रीट समारोह के मद्देनजर आज उद्योग भवन और केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशनों के रफी मार्ग की तरफ वाले निकास द्वार दोपहर 2 बजे से शाम 6 बजे तक बंद रहेंगे। इसके अलावा दिल्ली यातायात पुलिस ने भी यातायात परामर्श जारी किया है। विजय चौक पर सामान्य यातायात दोपहर 2 बजे से रात 9:30 बजे तक बंद रहेगा। सुनहरी मस्जिद और कृषि भवन के बीच रफी मार्ग पर आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी। रायसीना रोड कृषि भवन से विजय चौक की ओर, दारा शिकोह रोड कृष्णा मेनन मार्ग और सुनहरी मस्जिद से आगे विजय चौक की ओर यातायात बंद रहेगा। इसके अलावा विजय चौक और सी हेक्सेगन के बीच कर्तव्य पथ तक की आवाजाही भी बंद रहेगी। लोगों को रिंग रोड, वंदे मातरम मार्ग, अरबिंदो मार्ग, मदरसा टी पॉइंट, सफदरजंग रोड, कमाल अतातुर्क मार्ग, रानी झांसी रोड और मिंटो रोड जैसे वैकल्पिक मार्गों का इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है। और दिल्ली नगर निगम की स्थायी समिति के अध्यक्ष सत्या शर्मा ने कल इस वित्त वर्ष के लिए निगम का बजट पेश किया। बजट में 17,000 करोड़ रुपए से अधिक की आय का लक्ष्य रखा गया है, जबकि 16,500 करोड़ रुपए के व्यय का अनुमान है। इसमें नगर निगम की आय बढ़ाने के लिए संपत्ति कर के दायरे में आने वाले सभी परिसरों से कर वसूली की जाएगी। दिल्ली में भलसवा, गाजीपुर और ओखला लैंडफिल साइट को कूड़ा मुक्त करने के बाद वहां की खाली भूमि पर हरियाली, जनसुविधाएं तथा विकास परियोजनाएं शुरू की जाएंगी। 300 से ज्यादा चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। फिलहाल निगम द्वारा ऐसे 419 चार्जिंग स्टेशन संचालित हैं। इसके अलावा शहर में व्यापक स्तर पर वृक्षारोपण कार्यक्रम का भी अनुमोदन है। बजट के अनुसार निगम के स्कूलों में सीसीटीवी कैमरे और सुरक्षा गार्ड तैनात किए जाएंगे। हर वार्ड में आयुष्मान आरोग्य मंदिर की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं की सुविधा के लिए हर विधानसभा क्षेत्र में मातृ शिशु केंद्र स्थापित किए जाएंगे। और अब रुक करते हैं मुंबई का। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार का अंतिम संस्कार आज सुबह 11 बजे पुणे जिले के बारामती में पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। श्री पवार का कल एक विमान हादसे में निधन हो गया था। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और राज्य मंत्रिमंडल के सदस्य अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। महाराष्ट्र सरकार ने उपमुख्यमंत्री के निधन के बाद सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की है। राज्य में 3 दिन का राजकीय शोक रहेगा। इस दौरान सभी कार्यालय और शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे और राज्य में सरकारी इमारतों पर राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा। इसके अलावा मुंबई में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए बृहन मुंबई नगर निगम सड़क की धूल साफ करने के लिए स्वचालित सफाई मशीनों का उपयोग करने की योजना बना रहा है। इसके अलावा शहर में पानी की बौछार भी की जाएगी। वायु गुणवत्ता सूचकांक की निगरानी की जा रही है। निगम के अधिकारियों ने बताया कि यदि किसी विशेष स्थान पर AQI खराब होने पर तत्काल सुरक्षा उपाय लागू किए जाएंगे। और उत्तर मुंबई में 210 हेक्टेयर में फैली खरपतवार ग्रस्त पवई झील से सीवेज निकालने का काम शुरू हो गया है। निगम ने झील में कच्चे सीवेज के प्रवाह को पूरी तरह रोकने के लिए मई तक की समय सीमा निर्धारित की है। पवई झील में भारतीय दलदली मगरमच्छ और IUCN में सूचीबद्ध कई प्रजातियां पाई जाती हैं। BMC के अनुसार लगभग 18 मिलियन लीटर प्रतिदिन सीवेज झील में आता है। पवई झील को केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा एक प्रमुख आर्द्र भूमि के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। और अब रुक करते हैं कोलकाता का, तो पश्चिम बंगाल में वन विभाग ने चौथे सुंदरबन पक्षी महोत्सव के परिणाम जारी किए हैं। इनमें मुख्य बफर और आवासीय क्षेत्रों में कुल 30,986 पक्षियों को दर्ज किया गया है। 23 जनवरी से शुरू हुए इस अभियान में 6 टीमों में विभाजित 36 पक्षी विज्ञानियों ने भाग लिया। सर्वेक्षण में 168 प्रजातियों की पहचान की गई, जिनमें 111 स्थानीय और 57 प्रवासी प्रजातियां शामिल हैं। रिपोर्ट में किंगफिशर की 7 अलग अलग प्रजातियों की उपस्थिति भी दर्ज की गई। 14 प्रजातियों को लुप्त प्राय श्रेणी में रखा गया है। ये पहल सुंदरबन बाघ अभयारण्य दक्षिण 24 परगना मंडल वन कार्यालय और राज्य वन विभाग के संयुक्त प्रयासों का हिस्सा थी। श्रोताओं, आज सवेरे में अब वक्त है महानगरों के मौसम का हाल जानने का। तो इधर राजधानी दिल्ली में आज घना कोहरा छाया रह सकता है। अधिकतम तापमान 18 डिग्री और न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। उधर मुंबई की बात करें तो शहर में मौसम आज साफ रहेगा। न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। और कोलकाता में सुबह हल्की धुंध रहेगी और बाद में मौसम साफ रहने का अनुमान है। शहर में न्यूनतम तापमान 16 डिग्री और अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने का अनुमान है। अब हैदराबाद, चेन्नई और बेंगलुरु के मौसम का हाल जानते हैं सुभद्रा से।
यस मुकेश, चेन्नई इज एक्सपेक्टेड टू हैव पार्टली क्लाउडी स्काई। द मिनिमम टेम्परेचर वाज 22 डिग्री सेल्सियस, मैक्सिमम विल बी अराउंड 29 डिग्रीज। बेंगलुरु इज एक्सपेक्टेड टू हैव मिस्ट इन द मॉर्निंग। द मिनिमम टेम्परेचर वाज 17 डिग्री सेल्सियस, मैक्सिमम विल बी अराउंड 28 डिग्रीज। हैदराबाद इज एक्सपेक्टेड टू हैव फॉग or mist in the morning and partly cloudy sky will be seen later on. The temperature will hover between a minimum of 18 degrees Celsius, maximum of around 30 degrees Celsius. And Mukesh, before we get to the history section, today it's one of important days in for our Indian newspaper.
Bilkul.
Today is Indian Newspaper Day. It is being celebrated today. The day commemorates the launch of India's first newspaper, Hickey's Bengal Gazette, also known as the Calcutta General Advertiser. This happened on the 29th of January in the year 1780. Founded by Irishman James Augustus Hickey in Kolkata, this day honors the history of Indian journalism, promotes the freedom of expression, highlights the role of print media in the society. It also commemorates the start of the first weekly newspaper in India and the birth of a free, often fearless press that challenged colonial rule. And of course, the newspaper was a strong critic of the Governor General Warren Hastings' administration that played a part in India's fight for free expression. This day also promotes the habit of reading newspapers, recognizes their role in shaping public opinion and providing reliable information in this digital age.
जी, और अब नजर डालते हैं आज के दिन के इतिहास पर। तो वर्ष 1676 में आज ही के दिन थियोडोर तृतीय ने रूस के जार का पद संभाला था।
1819, British East India Company Administrator Stamford Raffles established the port of Singapore. And 1845, Edgar Allan Poe's famous poem, The Raven, was published on this day in New York Evening Mirror. and Mukesh, an important day. German mechanical engineer Karl Benz patented the first practical automobile powered by an internal combustion engine. Of course, there's some very interesting facts about this vehicle. Karl Benz applied for a patent for his vehicle powered by a gas engine or Motorwagen. And as we all know, it was the world's first production of automobile, which forever changed the way people move. Of course, the name was Mercedes-Benz.
जी, और 1916 में प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी ने फ्रांस पर पहली बार आज के दिन हमला किया था.
And 1924, very interesting news, Mukesh. जी. The first machine for rolling ice cream cones was patented by Carl Rutherford Taylor of Cleveland.
बिल्कुल बिल्कुल. I'm sure. और जैसा कि अभी सर्दी का मौसम चल रहा है तो
the studio is warm now, right now. You know, I feel like having a cone of ice cream.
ऐसी ठंडी प्रभात में आइस क्रीम खाने का जो एक मजा है वो अपने आप में ही अद्भुत आनंद देता है.
Yes, of course, of course. And 1929, the Seeing Eye, the first U.S. school to train guide dogs for people with vision impairment, opened in Tennessee. And also, let's talk about, 2006, Irfan Pathan becomes the first bowler to take a hat-trick in the first over in Test cricket. And Vinod Kambli, in 1993, made his international Test debut against England in Kolkata.
और अब बात उन महान व्यक्तियों की जिनकी आज पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन है.
Yes, let me start with a literature person.
Bilkul, bilkul.
One of the most vividly evocative writers of English, H.E. Bates, who wrote 11 novels, over 300 short stories, several non-fiction books on country life and gardening, as well as poems, plays and stories for children. His best-known works include The Two Sisters, Love for Lydia, The Darling Buds of May and My Uncle Silas. Bates passed away this day in 1974.
और आज पुण्यतिथि है उर्दू के प्रसिद्ध शायर और साहित्यकार मोहम्मद अलवी की. उनके कविता संकलन चौथा आसमान के लिए उन्हें वर्ष 1992 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था. इसी साल गुजरात साहित्य अकादमी ने भी उन्हें सम्मानित किया. सन 1937 में जामिया मिल्लिया इस्लामिया दिल्ली के बच्चों के स्कूल में दाखिला लिया उन्होंने, लेकिन वे पढ़ाई में ज़्यादा अपना मन नहीं लगा पाए. पाँचवीं कक्षा से आगे उन्होंने पढ़ाई नहीं की और वे वापस अहमदाबाद की ओर कूच कर गए. उनके घर का माहौल साहित्यिक था और शायरी खुद उनके खून में दौड़ रही थी, इसीलिए साहित्य पढ़ने का सिलसिला उनका जारी रहा. उन्होंने 1947 में पहली गज़ल लिखी, जिससे उनकी अपने ढंग की अनोखी शायरी का सिलसिला चल निकला और उर्दू शायरी में एक नए अध्याय का इजाफा हुआ. उनका पहला कविता संग्रह खाली मकान 1963 में आया और फिर 1967 में आखिरी दिन की तलाश, 1968 में तीसरे किताब, 1992 में चौथा आसमान का प्रकाशन हुआ. वर्ष 1995 में उनका कविता समग्र रात इधर उधर रोशन प्रकाशित हुआ. पेश हैं उनके कुछ ये शेर. सर्दी में दिन सर्द मिला, हर मौसम बेदर्द मिला. एक और शेर, माना कि तू जहीन भी है खूब रूबरू भी है, तुझसा न मैं हुआ तो भला क्या बुरा हुआ. और एक और शेर सुनते हैं उनका. देखा तो सबके सर पे गुनाहों का बोझ था, खुश थे तमाम नेकियां दरिया में डालकर. इसीलिए श्रोताओं, हमें कुछ नेकियां ऐसी करनी चाहिए जिनका गवाह हम खुद ही हों, क्योंकि कहा भी गया है कि नेकी कर दरिया में डाल. और नेकी करना एक तरह से हम कह सकते हैं कि कुछ किसी को देने के समान है. तो अगर हम इस देह की अगर बात करें तो इसके संदर्भ में भी एक हिंदी का दोहा है कि देह धरे का फल यही, देय देय कछु देय, देह खेह जब होएगी तो कौन कहेगा देय. तो इसीलिए नेकी करते रहें और अपने अंदर सद्विचारों को आमंत्रित करें.
And you started with those poems. I'm starting with another poem now. There's a patch of old snow in a corner that I should have guessed was a blow-away paper the rain had brought to rest. It is speckled with grime as if small print overspread it. The news of a day I've forgotten if I ever read it. This beautiful poetry was penned by one of America's celebrated poets, Robert Frost, whose work continues to resonate with readers even today, friends. His style was simple, with which he explored the themes of nature, of rural life, and also his ability to capture the essence of everyday experiences. Of course, that's made his poems enduring classics. His unique voice, blending traditional modern elements, cemented his place as a major figure in American literature. And from, of course, he had earned four Pulitzer Prizes and became the most famous poet of his time before his death at the age of 88 this day in the year 1963. And we also remember Anton Chekhov, Russian playwright and short story writer, born this day in 1860, who started his life as a physician who treated patients, but then literary bug bit him hard. He switched to writing for drama and short stories. And today is also the birth anniversary of David Byron, one of the greatest voices in hard rock with a distinct tone. Yes, folks, British band Uriah Heep's lead singer from 1969 to 1976. David Byron sang on Heep's greatest hits like Gypsy, Lady in Black, Stealing, July Morning, and The Wizard that's going on in the background. Sadly, friends, he left us early at the age of 38 in 1985.
Wandering, he told me tales and he drank my wine. Me and my magic man kind of.
श्रोताओं, आज पुण्यतिथि है जाने माने भारतीय अभिनेता अरविंद जोशी की. अरविंद मुख्यतः गुजराती रंगमंच से जुड़े हुए थे. उनके बेटे शर्मन जोशी भी हिंदी फिल्मों में मशहूर अभिनेता के रूप में जाने जाते हैं. अरविंद जोशी ने कई हिंदी सीरियलों में भी काम किया. उन्होंने फिल्म अपमान की आग, शोले और इत्तेफाक और कई अन्य फिल्मों में मुख्य भूमिका निभाई. हिंदी सिनेमा के साथ साथ गुजराती नाटकों में भी अरविंद जोशी ने काम किया.
एंड फ्रेंड्स, अ वेरी स्मूथ गॉस्पेल ट्रेन्ड बैरिटोन सिंगर सॉन्गराइटर ऑफ सोल एंड रिदम एंड ब्लूज, James Ingram, passed away this day at the age of 66. James, of course, sang in a church choir before joining college to study, but then gave up his scholarship to go for music full-time. He taught himself to play piano, synthesizer, drums, bass and guitar. As a composer, Ingram co-wrote PYT, That's Pretty Young Thing, with Jones for Michael Jackson's album, and also wrote material for Ray Charles and the Pointer Sisters. And friends, here's a tune to remember him.
Somewhere saying a prayer that we'll find one another in that big somewhere out there. And even though I know how very far apart we are.
आज पुण्यतिथि है किंगरा सिख समुदाय के सामाजिक और आध्यात्मिक नेता बाबा इकबाल सिंह की. वे कलगीधर ट्रस्ट, द कलगीधर सोसाइटी ऑफ बारू साहिब के संस्थापक अध्यक्ष थे. हिमाचल प्रदेश कृषि विभाग के निदेशक पद से सेवानिवृत्ति के बाद उन्होंने वर्ष 1982 में कलीघर ट्रस्ट बडू साहिब की स्थापना की. भारत सरकार ने उन्हें वर्ष 2022 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया.
He was called the father of the compact disc. Norio Ohga, Japanese business executive, who as a former president and chairman of Sony, is credited with developing the compact disc. Of course, having had a career as an opera singer before he joined the company in the 1950s, he remained a music connoisseur and recognized the importance of improved sound quality made possible by the CDs. Sony issued the world's first CD in 1982, and in Japan, within 5 years, the format overtook LP sales. He was born this day in 1930. And also, the queen of all media, Oprah Winfrey, celebrates her birthday today. She's, of course, the first African-American woman to own her own production company. The successful host of a syndicated television talk show was also a major force in the drafting, lobbying and passage of National Child Protection Act, signed into law by President Clinton in 1994. She also funds battered women's shelters and campaigns to catch child abusers and many more such noble deeds. And today is the birthday of electric blues guitarist Johnny Lang, who was born and raised outside Fargo, North Dakota. Father played drums and his mother loved roots music and the soul of Motown era. So the Lang household was always filled with inspirational grooves. Happy birthday, Johnny.
और आज जन्मदिन है भारत के प्रसिद्ध निशानेबाज राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का. अगस्त 2004 में एथेंस ओलंपिक में किसी व्यक्तिगत स्पर्धा में उन्होंने रजत पदक भारत के नाम किया। 2004 में उन्हें अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और श्रोताओं, कार्यक्रम के समापन में आज का सुविचार, रिश्तों की रस्सी तब कमजोर पड़ जाती है जब इंसान गलत फहमी में पैदा होने वाले सवालों के जवाब खुद ही तलाशने लगता है। आज सवेरे के आज के इस अंक में बस इतना ही। अगर आप आज सवेरे कार्यक्रम दोबारा सुनना चाहते हैं तो लॉग ऑन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर। इसके साथ ही अनुमति दीजिए मुकेश और सुभद्रा को कार्यक्रम आज सवेरे यहीं संपन्न करने की।
थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन फ्रेंड्स, हैव अ ग्रेट डे। नमस्कार।